डॉक्टर साहब, ये आरडीएस के बारे में जो आप बात करेंगे, ये क्या बीमारी है और जो दूसरी सांस की बीमारियां बच्चों में होती हैं, इसमें क्या फर्क है?
जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सांस की बीमारियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन आरडीएस एक खास किस्म की बीमारी है। आरडीएस का फुल फॉर्म जो है, इसका मतलब है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या इसका दूसरे नाम से भी मतलब पहले बुलाया जाता था और आज भी लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर आजकल इसको आरडीएस के ही नाम से बुलाया जाता है। इसका दूसरा नाम है हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़, क्योंकि जब आप हाइलिन मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं इसको, जब आप इसकी बायोप्सी लेते हैं किसी चीज़ की, मतलब आपके लंग्स से लेंगे, आपके फेफड़ों से लेते हैं, मतलब मरीज़ के फेफड़ों से स्पेसिमेन लेते हैं, तो जब उसको देखते हैं एक माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसमें हाइलिन कार्टिलेज जैसी बने पड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ बोलते हैं। तो इसमें होता यह है कि हमारी फेफड़ों के अंदर एक सब्सटेंस होती है, एक चीज़ होती है जिसको सर्फेक्टेंट बोलते हैं। सर्फेक्टेंट का काम यह होता है कि क्योंकि हमारी फेफड़ों के अंदर जो होते हैं अल्वियोलस होते हैं, जिनको बोलते हैं हम, वो क्या कहते हैं उसको, हम वो हवा के वो जो होते हैं वो थैलियाँ होती हैं,
जी
एयर सेक्स भी जिनको बोलते हैं, तो सर्फेक्टेंट का काम यह होता है कि वो उनको ओपन रखता है, वो खुला रखता है, ताकि हमें सांस लेने और सांस बाहर छोड़ने में आसानी हो जाए। लेकिन बच्चों में ये होता है कि ये इस बीमारी में ऐसा होता है कि सर्फेक्टेंट नहीं बन पाता है हमारे फेफड़ों के अंदर, फिर वो जो अल्वियोलस होते हैं, वो जो वो थैलियाँ होती है
बंद हो
हवा की
जाती
थैलियाँ,
है।
वो बंद हो जाती है और सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो इसको इसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, और उन छोटे बच्चों में पाया जाता है जो अपनी जो मुद्दत होती है, मतलब फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम एक आम नुक्ते से अगर देखें तो 9 महीने के बाद अच्छे तरीके से, मतलब जो बच्चे की जो ये मुद्दत होती है,
जी
तो उसको माँ मतलब जनती है फिर।
अच्छा, इमेच्योर बच्चों में पाया
जी
जाता है
बिल्कुल,
यानी।
ज़्यादातर इमेच्योर बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि जो 26 वीक्स जिनकी गेस्टेशन पीरियड होगी, जो मतलब 26 वीक्स 26 हफ्तों में
जी
अगर उसके बाद वो मतलब पैदा हो जाए बच्चा, तो उनमें ज़्यादा खतरा होता है आरडीएस की जो ये बीमारी है उनमें पाए जाने की। जितने भी प्रीमेच्योर एज है, चाहे 26 हो, 36 हो, या फिर 28 वीक्स की भी हो, या 33 वीक्स की भी हो, जितने भी प्रीमेच्योर चाइल्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये आरडीएस की बीमारी पाई जाती है।
अच्छा, ये आपने कहा कि ये प्री मेच्योर बच्चे जो होते हैं, जो वक्त से पहले दुनिया में आ जाते हैं, उनमें पाई जाती है। इसका मतलब है कि जो आम बच्चे जो होते हैं, जो अपना पूरा वक्त तय करके जो दुनिया में आते हैं, तो उनमें ये बीमारी के खतरा नहीं होता है, या होता है खतरा?
जी बिल्कुल, इसके कुछ क्योंकि जैसे हम आगे आगे बात करेंगे इसकी वजूहात, इनके मतलब इसके वजूहात कौन से हैं, तो उनमें कुछ एक ही मतलब आरडीएस के कुछ बहुत सारे वजूहात हैं। इसी तरीके से कुछ ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ 80% जो होते हैं केसेस, जो
अच्छा,
प्रीमेच्योर
प्रीमेच्योर
केसेस
बच्चों के
होते हैं,
होते हैं।
एक और दूसरे भी उसके वजूहात हो सकती हैं, लेकिन प्रीमेच्योर केसेस बहुत ही ज़्यादा होती हैं।
आपने बताया कि प्रीमेच्योर नवजात बच्चों में होता है, तो क्या वजह है इसकी?
जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी कहा कि एक अपनी एक वजूहत यही प्रीमेच्योर बर्थ जो है,
ये
यही
एक
एक वजह है,
वजह है।
लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरे वजूहत भी हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो मेजॉरिटी वजूहत है इसकी वही प्रीमेच्योर बर्थ्स होती है, मतलब अपने वक्त की वो जो मुद्दत होती है
उससे
वो
पहले
कंप्लीट
लेने
नहीं कर पाते हैं, और उससे पहले ही मतलब बच्चा पैदा होता है। तो इसके साथ साथ जो माएँ जिनको डायबिटीज़ होता है, क्योंकि उनके रिस्क होती है, वो इंसुलिन लेवल जो इंक्रीज होती है, वो बच्चे के अंदर जब माँ के रहम में बच्चा होता है, तो वो रिस्क फैक्टर पैदा कर सकता है, ताकि वो जो सर्फेक्टर जैसे मैंने कहा वो लंग्स में बनता है, वो उसको बनने में मतलब वो उससे बनने में रोकता है, जो अगर माँ डायबिटिक हो, तो ये भी एक वजह बन सकती है कि माँ के
माँ का
डायबिटिक होने
डायबिटिक
से
होने की।
तो आरडीएस हो सकता है। इसके अलावा जो मतलब बच्चे के साथ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ ज़्यादातर जैसे मैंने अभी कहा कि आपको माँ के मतलब डायबिटिक पेशेंट्स होता
जी
है, और इसके साथ साथ दूसरे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कुछ गैसेस, फॉर एग्जांपल एक माँ एक प्रेग्नेंट है और वो एक रूम में बैठी हुई है, और वहाँ पे बुखारी या दूसरी किस्म चीज़ की
हीटर चल
हीटर
रहे
चल
हैं।
रहे होते हैं, जिनसे वो मतलब गैसेस पैदा होते हैं, जो
जी
नोट्स नहीं कर पाता है बंदा, लेकिन उसकी वजह से जब माँ इंस्पायर करती है, जो वो सांस लेती है, तो उसकी वजह से भी बच्चे जो माँ के रहम में होता है, उसके वजह से भी उसके लंग्स पे असर पड़ सकता है, और वो आरडीएस का शिकार हो सकता
तो
है।
इसका मतलब है, यानी अगर जैसे सिगरेट का धुआं है, ये
जी
सब
बिल्कुल,
गाड़ी का धुआं, ये सब भी अफेक्ट कर सकता
जी
है।
बिल्कुल, ये सारी जो इसमें पॉइजनस गैसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें उस पर इफेक्ट कर सकती हैं। तो ज़्यादातर इसकी वजूहत जो है प्रीमेच्योर बर्थ ही होती है। जी
और एक सवाल आया है, ये बताइए कि ये कैसे पता लगे, अब जैसे बच्चा पैदा हो गया, अब उसे आरडीएस की प्रॉब्लम है, तो एजाज तनवीर साहब पाकिस्तान से लिखते हैं कि कैसे पता लगे कि ये आरडीएस है या नमोनिया है, क्या
जी
इनके
बिल्कुल,
अलामत सेम एक जैसी होती हैं?
जी बिल्कुल, इनके अलामत के ही बिना पे हम बोल सकते हैं कि निमोनिया कौन सी चीज़ है और
तो
आरडीएस
अलामत
कौन सी
बताएं
चीज़ है।
हमें।
तो इसकी अलामत बहुत सारी हैं। जैसे पहली सबसे बड़ी अलामत ये है कि जब बच्चे भी सांस लेता है तो जब वो बाहर सांस छोड़ता है तो जैसे हमने देखा होगा कि एस्मा के जो पेशेंट्स होते हैं जब वो सांस लेते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और वो आवाज़ के साथ सांस लेते हैं, जो वो खांसी की थोड़ी बहुत वो आवाज़ आती है। तो इसी तरीके से बच्चा जब सांस लेता है, क्योंकि बच्चा कोशिश करता रहता है कि मेरे अल्वियोल्स ओपन रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा हवा अपने फेफड़ों में ले जाऊँ, तो जब वो बहुत मतलब बड़ी वो बोलते हैं ना, वो हार्डवर्क करता है ताकि उसके फेफड़ों के अंदर हवा चली जाए, के साथ साथ हवा के साथ साथ उसके साथ साथ ग्रंट्स जिसको हम बोलते हैं वो आवाज़ आती है, उसकी सांस लेने के साथ साथ आवाज़ आती है। ये एक इसके अलाइम है। और इसके साथ साथ दूसरा अलाइम ये है कि बच्चे की जो बॉडी कलर है वो ब्लूश हो जाता है,
अच्छा, क्योंकि इतनी ताकत
नीलापन
लगाता है
हो
वो।
जाता है। जी बिल्कुल, इसमें नीलापन आ जाता है। और दूसरे अलाइम ये है कि उसमें जो नेजल फ्लेयरिंग उसको हम बोलते हैं, जो नाक के जो ये ओपनिंग्स होती है बाहर की,
जी
जब वो सांस लेता है तो वो ये बहुत खुल जाती हैं। तो ये दूसरी तीसरी एक अलामत है इसकी। और एक अलामत ये है इसकी, जब बच्चे में फॉर एग्जांपल एक तो हमने कहा कि नेजल फ्लेयरिंग होती है और
जी
दूसरा हमने कहा कि
नीला पड़ने
ब्लूश
लगता
कलर,
है।
हाँ ये
जी
सबसे बड़ा ब्लूश कलर ये इसकी एक ज़बरदस्त ये अलामत है। तो निमोनिया को और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलाइम के बिना पर, क्योंकि निमोनिया में ब्लू कलर नहीं पाया जाता है बच्चे के साथ।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम जो है अलामत की बात कर रहे थे, तो
जी
और
बिल्कुल,
इसकी अलामत बताइए। एक तो नीला पड़ जाना, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा थोड़ा दौड़ लगाते हैं या कुछ होते हैं या वो नीले पड़ जाते हैं,
जी
तो
बिल्कुल,
और कोई इसकी अलामत हो?
इसकी एक अलामत यह है कि उसको हम मतलब जो लैंग्वेज में उसको हम ट्रैकिपेनिया बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब बच्चा सांस लेता है तो वो बहुत भारी और बहुत तेज़ी से सांस लेता है। तो जब आप बच्चे को देखें कि वो बहुत इन अलाइम के साथ साथ ये अलाइम भी इसमें पाई जाए कि वो सांस बहुत तेज़ी से ले रहा है, मतलब सांस अंदर भी ले रहा है और हवा बाहर मतलब जाने की कोशिश भी कर रहा है, तो इसकी ये एक उन अलाइम के साथ साथ ये भी इसके अलाइम में शामिल है।
अच्छा, ये बताएं कि ये जो जिसमें आप अलामत की बात कर रहे हैं, ये अलार्म जो है जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो दिखने लगती है या नहीं, मसलन बच्चा घर पे आ गया उसके बाद? क्योंकि अगर हॉस्पिटल में होता तो डॉक्टर भी ये चीज़ें देख सकता है।
जी बिल्कुल, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बर्थ के बाद ही, अगर प्रीमेच्योर बर्थ हो, मतलब 20, जैसे मैंने कहा कि 26 वीक्स के गेस्टेशन पीरियड होती है प्रीमेच्योर बर्थ, या 28 वीक्स की होती है, क्योंकि जो सर्फेक्टेट होता है वो बनने लगता है 28 वीक्स के बाद। 28 वीक्स के बाद सर्फेक्टेट बनना शुरू होता है, और अगर उससे पहले ही बच्चा पैदा हो जाए तो उसमें सर्फेक्टेट बनने की कोई मतलब वो सूरत हाल नहीं होती है, तो उसकी वजह से आरडीएस होता है। जैसे आपने कहा कि 48 आवर्स बच्चा पैदा होने के बाद इसके अलावा बहुत ज़्यादा जाहिर होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब वो रिस्की और बहुत ही ज़्यादा अलाइम के साथ साथ जाहिर होता है आरडीएस। ये सारी अलामतें एक साथ एक बच्चे में पाई जाती है। फिर अगर इसको ट्रीट किया जाए, अगर इसको डायग्नोज किया जाए उसी के वक्त, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के साथ साथ ये ट्रीटमेंट ये अलाइम कम कम होते जाते हैं, लेकिन 48 आवर्स पैदा होने के बाद इसके अलाइम बहुत ज़्यादा ये मतलब जाहिर होते हैं।
अच्छा, हम इंशाल्लाह इसके इलाज के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक सवाल ये है कि आपने कहा कि मसलन बच्चा जो है प्रीमेच्योर जो है दुनिया में आया है और जल्दी आ गया है दुनिया में, तो उसमें 80% जो है उस बच्चे में चांसेस होते हैं कि वो
जी
उसको ये हो, क्या ऐसा हो सकता है कि हो सकता है बच्चा प्रीमेच्योर हो लेकिन, या प्रीमेच्योर ना हो, आम बच्चा है और बाद में उसमें ये प्रॉब्लम हो, यानी वो जो आप कह रहे हैं वो बनना बन जाए, उसकी थैलियाँ जो है बंद रहें बाद में किसी वजह की, कोई ऐसी हो सकती है वजह जिसकी वजह से वो सांस लेने में उसे
जी
प्रॉब्लम
बिल्कुल
हो?
जी, एक इसमें एक वजूहत ये भी है, उसको हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोलस। उसका मतलब ये होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जैसे एक जवान मतलब जब बच्चा होता है तो उसकी जो एज होती है, तो हमारे बदन के अंदर जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए वो हमारे हार्ट से लेके हमारे दिल से लंग्स में जाता है हमारा खून, ताकि वो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स बहुत ही अच्छा काम कर, अगर उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाए तो फिर बहुत ही मतलब रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं।
जी
तो लंग्स में खून जाने की वजह ऑक्सीजनेटेड बन जाता है ताकि वो लंग्स में अच्छा साफ खून चला जाए, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको लंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोल्स मैंने बताया आपको, वो क्या
जी
काम करता है, वो एक सुराख की तरह होता है जो खून को मतलब फेफड़ों में जाने से रोकता है। तो मतलब खून को ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए फेफड़ों में नहीं जाना पड़ता है, वो सीधे उस मतलब सुराख से खून जाके बच्चे के बदन के अंदर वो सीधे पेरिफेरल मतलब उसके दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो माँ के वो उस वो कनेक्शन जो होता है उसी में ऑलरेडी ऑक्सीजनेशन हुआ होता है ऑलरेडी, ताकि फिर वो उसकी वजह से लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो जो ओपनिंग होती है वो सुराख होता है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि अब उसको बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है। तो इसी के साथ साथ अगर वो खुला रह जाए, अगर नॉर्मल भी हो, मतलब प्रीमेच्योर बर्थ भी ना हुई हो, अपना जो मुद्दत हो वो पूरी की गई हो उस बच्चे ने माँ के रहम के अंदर, और अगर उसके बाद ये पेटेड डक्टस आर्टेरियोल्स जो है ये सुराख है वो बंद ना हुआ हो, तो बच्चा ये भी एक वजह बन सकती है कि एक नॉर्मल बच्चे में वो भी एक आरडीएस का शिकार हो सकता है।
अच्छा, आमतौर पर टेक्नोलॉजी जो है बहुत तरक्की याफ्ता हो गई है, और देखा गया है कि बहुत सी बीमारियां हैं जो बच्चे के पैदा होने से पहले जो है पता चल
जी
जाती हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि क्योंकि बच्चे को उस वक्त ज़रूरत नहीं होती है कि वो अपने फेफड़ों का उस तरह से इस्तेमाल करे
जी
जब माँ के पेट में होता है, तो क्या इस बीमारी का इलाज या इस बीमारी की जो ये बीमारी की पता जो लगाते हैं माँ के रहम से नहीं पता चल सकता है
जी
पहले ही बदन
बिल्कुल,
से?
जैसे आपने कहा कि कुछ सैंपल्स होते हैं जैसे ब्लड टेस्टिंग सैंपल्स लेते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी जो होती है तो कभी कभार अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी होती है। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाओगे, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट होगी या दूसरा कोई डॉक्टर होगा, वो आपको बताएगा फॉर एग्जाम्पल आप इस डेट पर आपकी मतलब डिलीवरी होने वाली है, लेकिन कुछ नासाजगार हालात की वजह से अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी हो गई और मतलब प्रीमेच्योर बर्थ ही हो गई, तो उनकी वजह से मतलब डायग्नोज नहीं कर पाते हैं सही तरीके से कि ये बच्चा जो है आरडीएस का शिकार है या दूसरी किसी बीमारी का शिकार है। लेकिन कुछ ब्लड सैंपलिंग ले सकते हैं, जो माँ के रहम से ले सकते हैं, ब्लड सैंपलिंग कर सकते हैं, ताकि उससे पता चले कि मतलब बच्चा की एंटीबॉडी कितनी होती है अंदर, और दूसरे दूसरे ऐसे किस्म के मैक्रोफेज और दूसरी दूसरी चीज़ें कितने होती हैं बच्चे के खून के अंदर, तो उससे पता लगा सकते हैं कि मतलब बच्चा किस हाल सूरत हाल में है। लेकिन उसी वक्त मतलब ये पता होना कि मतलब बच्चा आरडीएस का, ये बहुत थोड़ा बहुत ये मुश्किल होता है।
मुश्किल होता है
जी
बताने में।
बिल्कुल
इलाज की बात करते हैं, और किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंशन की, हम इसे इससे बच सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हमें
जी
बताइएगा।
बिल्कुल, पहले थोड़ी ट्रीटमेंट पे बात करते हैं,
जी
उसके बाद
बिल्कुल।
प्रिवेंशन पे चले जाएंगे। ट्रीटमेंट में ज़्यादातर जब बच्चा मतलब पैदा हो जाता है तो उसके जो जैसे मैंने कहा कि फेफड़े उनको कोलैप्स बोलते हैं हम, कोलैप्सिंग ऑफ अल्वियोलाई, जो वो थैलियाँ होती है हवा की, चूँकि वो बंद हुई होती है वो ऊपर नहीं हुई होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट का एक सबसे बड़ा ये होता है कि विंड पाइप के थ्रू जो हमारी जो हवा की नाली है उसके
जी
थ्रू एक ट्यूब डालते हैं जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, वो ईटी ट्यूब डालते हैं उस विंड पाइप से, जो हवा के फेफड़ों तक पहुंच जाता है, उसकी वजह से उस बच्चे में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो क्योंकि वो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है लंग्स तक, तो उसकी विंड पाइप के थ्रू उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ताकि वेंटिलेटर पे उसको विंड पाइप के थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है, ताकि वो जो ये हवा की थैलियाँ हैं वो ऊपर न रहे, वो मतलब खुली रहें और उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, वो आराम के साथ सांस ले। ये एक इसके इलाज है कि उसको वेंटिलेटर पे रख के एंडोकार्डियल ट्यूब के साथ इलाज करते हैं। और दूसरा ये होता है कि उसको आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट देते हैं, तो आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट सीधा इंजेक्ट करते हैं वो लंग्स में, वो
जी
फेफड़ों के अंदर सीधे चला जाता है, क्योंकि वो अपना जो सर्फेक्टेंट होता है वो बन नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट इंजेक्ट करना पड़ता है उसके फेफड़ों के अंदर बच्चे के अंदर, ताकि वो लेकिन वो डोज के उसके डोजेस मतलब डिपेंड करता है कौन बच्चा मतलब कितनी शिद्दत के साथ
के साथ
इस बीमारी का शिकार हुआ होता है, तो वो इंजेक्ट करके वो सर्फेक्टेंट अंदर डालते हैं, ताकि वो भी इसी का काम करता है कि वो फेफड़ों को मतलब एक तो वो सरफेस एरिया बढ़ाता है उसका, और
जी
दूसरा ये कि उसकी ओपनिंग होने में मदद देता है। ज़्यादातर इसी पे और वेंटिलेटर पे ही ज़्यादातर इन बच्चों को ये तीन कुछ ट्रीटमेंट से जो
जी
ज़्यादातर यूज़ होती हैं हॉस्पिटल्स में।
तो इन बच्चों को हॉस्पिटल ही में रखा
जी
जाता है,
बिल्कुल, ज़्यादातर
और
इनको
क्या
हॉस्पिटल्स
तकरीबन
में
क्या
रखा
मुद्दत
जाता है।
होती है?
देखिए ये डिपेंड करता है, ये शिद्दत पे डिपेंड करता है कि आरडीएस कितना मतलब शदीद हुआ होता है, क्योंकि कुछ बच्चों में जो ही जैसे आपने कहा कि जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि मतलब अलामत कब जाहिर ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करते हैं, तो 48 आवर्स के बाद जब शिद्दत अलामत जाहिर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर उसी टाइम पर इलाज किया जाए, डायग्नोज किया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता से मतलब कुछ घंटों या कुछ मतलब दिनों की बात होगी या एक हफ्ते की बात होगी, जिसके साथ
सही हो
साथ फिर
जाएगा।
ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ शदीद होते हैं जिनको बिल्कुल दूसरे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी फिर उनमें से आ जाती है, उनको फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो वो थोड़ी बहुत वो ड्यूरेशन लेता है, मतलब वो थोड़ी बहुत लेंथी प्रोसीजर और ट्रीटमेंट होता है।
अच्छा, ये जो बीमारी है आरडीएस, क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे शिद्दत अख्तियार कर ली, इलाज हो गया, लेकिन बाद में जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसे सांस की जो है प्रॉब्लम्स रहें या नहीं, वो बिल्कुल उसका कंप्लीट इलाज हो जाता है?
जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये इलाज, मतलब जैसे मैंने कहा कि शिद्दत पे ही डिपेंड करता
जी
है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब जो ये आरडीएस बहुत शदीद होता है, और यूजुअली मतलब कुछ ऐसे बच्चे वो ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, तो वो ज़्यादातर एक्चुअली उनकी फिर डेथ ही होती है, जो मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर उसको अच्छे तरीके से उसी वक्त डायग्नोज मतलब अपनी ही मुद्दत में, अपने पहले ही मतलब 40 आवर्स के बाद ही डायग्नोज किया जाए, और उसी के साथ साथ फिर इलाज भी किया जाए, मेडिकेशंस दी जाते हैं, ज़्यादातर मेडिकेशंस जो होती है वो क्या कहते हैं उसको, वो पेन किलर्स होती हैं,
जी
क्योंकि पेन भी इसके साथ साथ होती है, तो ज़्यादातर मेडिकेशंस पेन किलर दी जाती है ताकि वो पेन कम हो जाए, और ज़्यादा दूसरी इसकी मेडिकेशंस नहीं हो। तो अगर अच्छी तरीके से डायग्नोज करके उसको मेडिकेशंस दे जाए, और डॉक्टर्स ने भी अच्छे तरीके से डायग्नोज किए जाए, तो आगे जाके आपके साथ ही प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन जिनके साथ प्रॉब्लम होती है और वो नहीं कर मतलब कोप नहीं कर पाते हैं इसके साथ, तो ज़्यादातर वो अपनी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।
यानी बाद में कोई लंग्स की और
जी
फेफड़ों की
बिल्कुल
प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं? क्या किया जाए कि इससे बचा जाए?
जी, ज़्यादातर जैसे पहले भी हमारे एक प्रोग्राम में एक वो हिस्सा था, तो उन्होंने बताया कि मतलब रोकथाम, जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर
मेरे
देन
ख्याल से
क्योर।
माओ को ख्याल
जी
रखना पड़ेगा
बिल्कुल,
इस चीज़ का, अपना ख्याल रखना
एक्चुअली
पड़ेगा।
ये ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे प्रीमेच्योर जो है बर्थ ना, प्री टर्म बर्थ जिसको हम बोलते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ वो ना हो। लेकिन अगर अब हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर प्रीमेच्योर बर्थ जैसे मैंने हमने पहले भी कहा कि अनएक्सपेक्टेड होती है,
जी
इससे पहले कि पता चले कि अनएक्सपेक्टेड बर्थ होने वाली है, क्योंकि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं उससे पता चलता है, प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं आजकल, तो ज़्यादातर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं उनको, एक मेडिकेशन होती है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं उनको माओ को, ताकि जो बच्चा है उसको आरडीएस का शिकार ना हो जाए। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड हो जाए और प्रीटर्म बर्थ हो जाए, फिर उसके बाद ही फिर बच्चे को मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काम नहीं करेंगे, फिर वो फिर बच्चे को अलग से ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी उसके साथ। तो ज़्यादातर प्रिवेंशन इसका यही है कि प्री टर्म बर्थ को कंट्रोल किया जाए, उसको उसको उस पर ज़्यादातर ख्याल रखा जाए, जब माँ मतलब हामिला हो तो उसको अपनी मतलब जो जो इतनी मुद्दत जो होती हो वो उसका ख्याल रखा जाए, और वो बस ये इसका एक मेजर प्रिवेंशन ही है।
तो आपने कहा कि माँ को ख्याल रखना चाहिए, तो दो तीन चीज़ें अहम बता दीजिए कि जो माँ को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जब वो हामला है। तो कुछ चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं,
जी
लेकिन
बिल्कुल,
जो बहुत अहमियत रखती हों।
जैसे मैंने कहा कि डायबिटिक, जैसे वो एक वजूहत बताई थी मैंने कि डायबिटिक मदर हो वो अपना ख्याल रखे कि मैं मतलब डायबिटिक वो अपना रेगुलर चेकअप कराए अपनी
वो
शुगर
बढ़े
लेवल का।
ना
जी
शुगर?
बिल्कुल, अपनी शुगर लेवल का रेगुलर चेकअप कराए अपने डॉक्टर के पास, ताकि अपने बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस ना बन जाए, और ऐसी जगहों पे ना बैठे जहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने कहा कुछ गैसेस मटेरियल्स होते हैं, या बुखारी का इस्तेमाल ना करे वहाँ पर, स्मोकिंग का इस्तेमाल ना करे बहुत ही, इससे एक ही बात नहीं हो सकती है आरडीएस ही नहीं, बिल्कुल दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जो स्मोकिंग की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत ही मुश्किलात होती है अब फिर बच्चे के लिए। इन कुछ चीज़ों का, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाए, तो फिर उम्मीद है कि मतलब एक प्री टर्म बर्थ नहीं होगी, और जो नॉर्मल बर्थ होगी उसी के साथ डिलीवरी हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। कुछ और अगर रह गया हो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 30 सेकंड है हमारे पास।
जी बिल्कुल, यही कि अपने डॉक्टर के साथ इस बारे में रुजू करें और अपना रेगुलर चेकअप किया करें। अगर अब आपने ऐसी अलामत भी देखी हो अपने बच्चे में,
फ़ौरन डॉक्टर के पास ले
फ़ौरन
जाएं।
डॉक्टर के साथ रुजू करें, ताकि कॉम्प्लिकेशंस और न बढ़ जाएं फिर।